सुखदेव ने कहा कि स्थिर बुद्धि में अर्थात ठहरी हुई बुद्धि में सब ज्ञान स्वतः पैदा हो जाता है। और देखते हैं स्वामी जी का दिव्य ज्ञान जिसमें हम सभी स्नान कर रहे हैं, तो स्थिर बुद्धि का क्या अर्थ है और स्वामी जी ने स्थिर बुद्धि की स्थिति प्राप्त करने को क्या साधना की थी। बहुत अच्छी बात है, जहां आपने ये चर्चा पढ़ी होगी वहां उपाय भी पढ़ा होगा। उसी जगह पर ये लिखा है कि उसका पाठशाला है एकांत और पाठ है मौन। बुद्धि की स्थिरता में सब ज्ञान स्वतः ही अभिव्यक्त होते हैं। इसका पाठशाला है एकांत और पाठ है मौन। और थोड़ा और विस्तार कर दूं तो इंद्रियों को विषय विमुख करके मन को निर्विकल्प कर देने से बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि जो है वह समस्ती शक्ति का एक अंश है और भौतिक तत्वों पर ही यह काम करती है, इतना तो आप लोग मानते ही हैं। सत्य से अभिन्न होने में, अविनाशी से अविनाशी योग प्राप्त करने में और परमात्मा से एक होने में बुद्धि सहायक नहीं है जी। बुद्धि वहां नहीं जाती है। तो बुद्धि का फंक्शन, बुद्धि का काम कहाँ तक है? जहाँ तक भौतिक तत्वों का मामला है। तो इंद्रियां जब विषय विमुख कर लेंगे आप, तो मन निर्विकल्प हो जाएगा। तो मन में अगर किसी प्रकार का संकल्प नहीं उठेगा तो बुद्धि की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, भीतर से मेरे में बोलने का संकल्प है, तो स्वर यंत्र से काम लेती हूँ मैं और ये बजने लगता है। जैसा जैसा स्वर निकालने का संकल्प है वैसा स्वर निकल रहा है। तो इस स्वर यंत्र के काम करने की आवश्यकता कब तक है? जब तक मुझ में बोलने का संकल्प है। ठीक है, अगर मैं बोलना न चाहूँ, किसी प्रकार की बातचीत करना आदमी न पसंद करे, छोड़ दे, तो स्वर यंत्र शांत हो जाएंगे ना, उनकी जरूरत नहीं रहेगी। ऐसे ही जब व्यक्ति इंद्रियों को विषय विमुख कर लेता है और मन को निर्विकल्प कर लेता है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो बुद्धि इंद्रियों के विषय विमुख करने से और मन को निर्विकल्प करने से बुद्धि का काम खत्म हो जाता है। अब उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जो इंटेलेक्चुअल फंक्शन है बुद्धि का, इंटेलिजेंस का जो काम है, वो कब तक चलता है? जब तक कि किसी प्रकार के संकल्प की उत्पत्ति होती रहे। तो उसका काम है कि वो विवेचन करेगी कि संभव है कि नहीं है, कि कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, करना चाहिए कि नहीं चाहिए, बहुत तरह की बातें उसमें फंक्शन क्रियाएं होने लगती हैं। तो ऐसा कर देने से बुद्धि सम हो जाती है। अब उसके लिए कोई काम नहीं रहा। तो जो बुद्धि सम हो जाती है, तो उस बुद्धि की समता में जब बाहर के भौतिक तत्वों के प्रभाव से उसमें फंसी हुई बुद्धि नहीं है, तो उस बुद्धि की समता में भीतर के ज्ञान का प्रकाश होता है और उसमें सब ग्रंथों में जीवन का जो सत्य अभिव्यक्त किया गया है वह स्वतः ही उसमें सब प्रकट हो जाता है। एक भाई ने एक ने और ये प्रश्न दिया है और इसमें लिखा है कि स्वामी जी ने स्थिर बुद्धि की स्थिति प्राप्त करने को क्या साधना की? तो इंद्रियों को विषय विमुख करना, मन को निर्विकल्प करना, एकांत में रहना और मौन रहना। पाठशाला है एकांत और पाठ है मौन, और साधना है विषयों से विमुख हो जाना और सब संकल्पों का त्याग कर देना। तो सब विषय भोगों का त्याग कर दो तो इंद्रियां विषय विमुख हो जाएंगी, और सब संकल्पों का त्याग कर दो तो मन निर्विकल्प हो जाएगा। तो ये उसकी साधना है और इसी साधना से उनकी बुद्धि स्थिर हो गई और बुद्धि की स्थिरता में उन्होंने सब वेद उपनिषद सब पढ़ लिया और पढ़ने वालों को धड़ाधड़ उत्तर देते रहे। तो बुद्धि के स्तर पर जो जो शास्त्रों का अर्थ समझा जाता है उसमें और ठहरी हुई बुद्धि में जो शास्त्रों का अर्थ प्रकाशित होता है उसमें कितना अंतर मालूम होता था, तो हम लोगों ने सबने देखा ही सुना है। अध्ययन के आधार पर बोलने वालों की जुबान बंद हो जाती थी। जब हमें एक भाई लिख रहे हैं शंका, जब हमें प्रभु से भी कुछ नहीं चाहिए तो प्रार्थना क्यों? अच्छी बात है, उनके भीतर ये शंका उठी है। तो प्रार्थना उसको नहीं कहते हैं जो जो कुछ चाह की पूर्ति करने के लिए किया जाए, वो प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना का अर्थ है जीवन की आवश्यकता अनुभव करना। मुझे सत्य चाहिए, मुझे अविनाशी जीवन चाहिए, मुझे नित्य योग चाहिए, मुझे प्रभु प्रेम चाहिए। तो जो सत्य है, जो नित्य विद्यमान है, उससे अभिन्न होने की आवश्यकता जो जगती है भीतर में, उसका नाम है प्रार्थना। और वो अनिवार्य है। वह प्रार्थना तभी आरंभ होती है जो भगवान से कुछ और नहीं मांगता है। धन चाहिए कि स्वास्थ्य चाहिए कि जस कीर्ति चाहिए कि संतान चाहिए कि सुख भोग चाहिए कि लंबी जिंदगी चाहिए, ये सब जो लोग चाहते हैं, इसके लिए भगवान से जो कुछ कहा जाता है उसका नाम प्रार्थना नहीं है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए स्वामी जी महाराज ने प्रार्थना शब्द के दो अर्थ बना दिए। एक कहा वैधानिक प्रार्थना और एक कहा अवैधानिक प्रार्थना। अब महाराज जी का अपना ये शब्दावली की रचना है। तो वैधानिक प्रार्थना उसको कहते हैं कि जो अवश्य पूरी होती है, जीवन की मांग पूरी होती है, सत्य की जिज्ञासा पूरी होती है, प्रेम की अभिलाषा पूरी होती है, तो इसकी जो आवश्यकता अनुभव करता है आदमी, उसका नाम है वैधानिक प्रार्थना। और हे भगवान मुझे मुकदमा जिता देना, हे भगवान मुझे व्यापार में लाभ दे देना, इसका नाम स्वामी जी ने हम लोगों को समझाने के लिए कह दिया कि भाई ये अवैधानिक प्रार्थना है, ये पूरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और हो जाए एक बार तो फिर भी सब टूट सकता है। विधान के आधार पर विधायक की सत्ता और विधायक के नाते विधान की सत्ता मानना, इनमें से हमारे लिए कौन अधिक हितकर है? जो तुम्हें पसंद आवे तो तुम्हें हितकर है। एक ईश्वर विश्वासी विधायक की सत्ता को स्वीकार करता है तो विधान को मान लेता है कि यह परमेश्वर की आज्ञा है। क्या आज्ञा है? कि तुम अपनी रक्षा चाहते हो तो किसी को हानि मत पहुंचाना। तो विधायक को मान लिया तो विधान को मान लेता है। और एक विचारक है, खोज के आधार पर चलना चाहता है, तो वो देखता है कि संसार में इतना जबरदस्त विधान चल रहा है, तो विधान को देख करके विधायक को मान लेता है। एक साइंटिस्ट का उदाहरण मैं आप लोगों को सुनाया करती हूँ। 4-6 वर्ष पहले की बात है, बातचीत हुई थी मेरी एक साइंस लेक्चरर से, तो उन्होंने अपने मित्र की कथा सुनाई थी मुझको कि वो एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी क्या कहलाता है, ग्रह नक्षत्र के एस्ट्रोनॉमी, तो उसमें वो रिसर्च कर रहे थे। देखा उन्होंने कि शून्य आकाश में इतना ट्रैफिक है, दिन रात ग्रह नक्षत्र तारे अपनी अपनी धुरी पर अपनी अपनी गति में चलते ही जाते हैं। तो शून्य आकाश और उसमें इतना असंख्य यात्री, और फिर भी कहीं कुछ एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, तो कौन संभाल रहा है इनको, कौन चला रहा है, ये किसके विधान पर चल रहे हैं, ये किसकी आज्ञा पर चल रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोलर तो कोई दिखता ही नहीं है। तो उसने अपने रिसर्च के विषय को छोड़ दिया, एकांत में जाकर के बैठ गया, कहने लगा कि अब ग्रह नक्षत्रों की गतिविधि कौन नापता रहे, अब चलो उस कंट्रोलर से मिल लो, सब समाचार मालूम हो जाएगा। ये अभी की बात है, अब उस भाई को मिल ही गए होंगे कंट्रोलर, जो इतना सब छोड़ छाड़ के बैठेगा उसे मिलने में क्या देर लगेगी। तो उसने क्या किया, उसने विधायक की सत्ता नहीं स्वीकार की थी, उसने विधान देखा कि कैसे ऐसे हो रहा है, कौन चला रहा है, कौन संभाल रहा है, किसके किसके संकेत पर इतने ग्रह नक्षत्र अबाध गति से असंख्य असंख्य वर्षों तक युगों तक चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, एक सेकेंड का एक सहस्रांश भी उनकी गति में धीमापन या तेजी नहीं आती है। लाख लाख वर्ष बीत गए, चल रहे हैं तो चल ही रहे हैं, अपनी ही दूरी पर चल रहे हैं, फर्क हुआ ही नहीं कभी। तो ऐसा कंट्रोलर तो कोई होगा जरूर, भले दिखाई नहीं देता है तो चलो अब उससे मिल लेते हैं। तो विधान देख करके विधायक को मानना हो गया ना, ठीक। अब प्रश्नकर्ता भाई पूछ रहे हैं कि मेरे लिए कौन सा अधिक हितकर है, तो दोनों ही हितकर हैं, अहितकर तो इसमें से कोई है ही नहीं है, और आपको जो रुचि है उसको ग्रहण कर लीजिए। विधायक में सहज से विश्वास होता हो तो विधायक की सत्ता स्वीकार करके विधान मान लीजिए, और विधायक को मानने की इच्छा न होती हो तो जीवन के विधान को देख देख करके विधायक को स्वीकार कर लेना पीछे से। सेवा प्रवृत्ति का अंत सहज निवृत्ति में होना चाहिए, इस निवृत्ति का स्वरूप क्या है, अथवा सेवा का अंत त्याग में होना चाहिए और करने का राग मिट जाना चाहिए। तो इस बात की व्याख्या तो बहुत जोर से उस दिन हो गई थी, काफी कर दिया था मैंने। सहज निवृत्ति का अर्थ ये होता है कि अपने आप से ही आपके भीतर बाहर की सब गतियां शांत हो जाएं। तो जीव विज्ञान, शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान, इन तीनों ही के आधार में एक पाठ हम लोगों को पढ़ाया जाता था विश्वविद्यालय में, हाउ लाइफ बिगिन, गति गति आरंभ कहाँ से हुई, तो कहाँ से आरंभ हुई उसका बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि खोजने चले तो वहाँ जो पढ़ा वो तो अधूरा ही था। स्वामी जी महाराज ने जो पढ़ाया वो पूरा था। तो स्वामी जी महाराज ने क्या पढ़ाया कि जीवन में करने का राग है तो राग के कारण से अहम में स्फूर्ति उत्पन्न होती है, फिर अहम कृति आरंभ हो जाती है, फिर संकल्पों के नए नए रूप बन जाते हैं, फिर ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेन्द्रियां सक्रिय हो जाती हैं। तो इसका खूब विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन भी किया मैंने, और फिर दार्शनिक अध्ययन करने पर भी यह इस बात का पूरा पोषण भी हो गया और निवारण की साधना भी सामने आ गई। तो प्रवृत्ति में हम लोग प्रवृत्त क्यों होते हैं, ऐसा अगर सोचिएगा तो स्थूल स्तर पर देखिए तो सूक्ष्म शरीर में संकल्पों का दर्शन होता है, होता है ना, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये खाना है, ये करना है, ऐसा। तो जब भीतर से संकल्प उठते हैं तो हम प्रवृत्तियों में प्रवृत्त हो जाते हैं। साधक जन क्या करते हैं कि अशुद्ध संकल्पों को और सुख भोग के संकल्पों का त्याग कर देते हैं, नहीं 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 मैं साधक हूँ, इन संकल्पों का स्थान नहीं है मेरे जीवन में, तो वे संकल्प वहीं खत्म हो जाते हैं। और शुभ संकल्प जिनमें की परिवार और समाज की सेवा बनती हो तो ऐसी प्रवृत्ति में हाथ डालते हैं, और हाथ डालने में भी उनको इस बात का पूरा ज्ञान रहता है कि ये कर्म करना है केवल करने के राग को मिटाने के लिए, इसके बदले में अपने को कुछ नहीं चाहिए, ना मटेरियल रिवार्ड चाहिए, ना वर्बल रिवार्ड चाहिए। आदमी बहुत शानदार हो जाता है तो किए हुए के बदले में कुछ सामान लेना पसंद नहीं करता, ये क्या बात है, मैंने पैसे के लिए किया था क्या, मैं मजदूर हूँ क्या, मैं गरीब हूँ क्या, इनकार कर देता है, नहीं 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 ये सब नहीं चाहिए। तो ये सब नहीं चाहिए तब उनको वर्बल रिवार्ड चाहिए, तो पेपर में निकलना चाहिए कि इन सेवाभावी सज्जन ने इतना इतना सामाजिक काम किया और ये इतने महान हैं कि उसके बदले में जो कुछ देने के लिए पसंद किया गया तो उन्होंने इनकार किया। ये जो पेपर में निकल जाएगा ये क्या है, ये वर्बल रिवार्ड है, मुंह जवानी पुरस्कार है शाब्दिक। तो सही प्रवृत्ति का अर्थ होता है कि उसके बदले में अपने को किसी प्रकार का कुछ नहीं चाहिए। ऐसा ज्ञान ले करके जब प्रवृत्ति में हाथ डालता है आदमी, तो काम खत्म होने के बाद भीतर से बाहर से सब तरफ से अपने आप शांति आ जाती है। तो सहज निवृत्ति का अर्थ क्या होता है कि एक निवृत्ति का अर्थ तो ये है कि अभ्यास के बल पर इंद्रियों को विषय विमुख करो, मन की गति पर कंट्रोल करो, चित्त को स्थिर करो। तो मन को रोकना, मन को बाधित करना, मन को संभालना और चित्त को स्थिर करना, इनका एक अभ्यास होता है। तो एक तो अभ्यास जन्य निवृत्ति है और एक है कि ज्ञान पूर्वक आपने हितकारी कार्य किया और उसके बदले में कुछ भी लेना आपने लिए पसंद नहीं किया, तो कार्य के अंत में सब प्रकार की क्रिया शक्ति जो है वो उस अविनाशी शांति में अपने आप डूब जाती है। जो संसार की जो गतिशीलता आरंभ होती है वो अखंड शांति में से आरंभ होती है और जब उसका काम खत्म होता है तो वो जाकर के उसी शांति में विलीन हो जाती है। तो एक तो अपने पर जोर डाल करके गति को रोकना और एक सहज भाव से सब गति जाकर के उस शांति में विलीन हो जाए। तो सहज भाव से जब गति विलीन हो जाती है, शांति में जाके डूब जाती है, इसको सहज निवृत्ति कहते हैं। सेवा का अंत त्याग में, तो सेवा का व्रत मनुष्य के जीवन में है इसी उद्देश्य से कि उसमें त्याग का बल आ जाए। सुख का भोगी बंधन में बंधता चला जाता है, पराधीन होता चला जाता है और सेवा का व्रत लेने वाला सेवक उत्तरोत्तर स्वाधीन होता चला जाता है। कैसे कि सेवा करेंगे और उसके बदले में अपने लिए कुछ नहीं चाहेंगे, तो इस व्रत से उसके भीतर अलौकिक शक्ति अभिव्यक्त होती है जिसके बल पर वह सब सांसारिक बंधनों को तोड़ देता है। इसलिए सेवा का अंत अगर त्याग में हो जाए तो समझना चाहिए कि मैंने ठीक सेवा की, और सेवा के बदले में अधिकार लोलुपता जग जाए तो समझना चाहिए कि मैंने सेवा नहीं की, मजदूरी की। जब इनर सर्किल में घनिष्ठ साधकों के साथ बैठ करके बातचीत होने लगती है तो मैं अपना दिल टटोलती हूँ, अपना चित्र उनके सामने रखती हूँ और उनको भी संकेत देती हूँ कि सोचते जाओ 6 महीने सेवा कार्य किया है कि 2 बरस किया है कि 5 बरस के लिए पद लेकर किया है कि 1 साल के लिए कि बिना पद लिए इतने दिन की सेवा की है। तो सेवा के अंत में अगर भीतर में अपने आप से रोम रोम में शांति छा नहीं जाती तो ऐसा समझो कि मेरी सेवा में कहीं कोई त्रुटि रह गई, अथवा ऐसा न लगे कि देखो इस संस्था की मैंने इतनी सेवा की और इस संस्था वाले लोग हमारी इस सुविधा का ध्यान नहीं रखते हैं। तो वो तो ध्यान नहीं रखते हैं, ये तो उनकी वे अपने कर्तव्य से चूक रहे हैं, तो उनका तो मालिक भगवान ही है, जाने दो उनको। लेकिन तुम्हें जो याद आ गया कि मैंने इस संस्था की इतनी सेवा की और इसके बदले में मुझे सुविधा नहीं मिल रही है, तो जो सुविधा नहीं दे रहा है उसकी त्रुटि तो उसी के लिए छोड़ दो, अपने लिए देख लो कि तुमको अगर याद आ गया कि मुझे सुविधा क्यों नहीं मिली तो सब किया कराया मिट्टी। सेवक को अपनी सुविधा की याद नहीं आती है, सेवक में त्याग का बल आ जाता है। जो पहली पीढ़ी के अपने लोग थे जैसे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, तो इन लोगों को जहाँ बैठा दिया गया आज वहाँ बैठ करके वैसे काम किया और कल वहाँ से उठा के दूसरी जगह बैठा दिया तो वहाँ बैठ के काम किया। तो ये लोग पद की शोभा बढ़ाते थे, पद के अधीन नहीं होते थे। ऐसे लोग हैं संसार में, पद की पकड़ने में नहीं आते हैं। पद पर बैठा दो तो उस व्यक्तित्व के बैठने से पद की शोभा बढ़ जाती है, लेकिन वे स्वयं उस पद में बंधते नहीं। जब मौका लगा तब छोड़ करके अलग खड़े हो जाते हैं। तो सेवा का अंत जो है त्याग में होता ही है, यह है मानव जीवन का एक अनुभूत सत्य है। और स्वाधीन तो व्यक्ति होता ही है राग निवृत्ति से, राग मिट जाएगी तो उसको स्वाधीनता मिल जाएगी। इस प्रश्न में भी वही बात है, स्वामी जी ने कहा है कि ठहरी हुई बुद्धि में श्रुति का ज्ञान अवतरित होता है, कृपया स्पष्ट करें। तो हो गया, हम अचार होना चाहते हैं, उपाय बताइए। उपाय का उपाय नहीं पूछा जाता है, अचार होना शांति का उपाय है, अचार होना मुक्ति का उपाय है, अचार होना स्वाधीन जीवन में प्रवेश करने का उपाय है। तो उपाय का उपाय पूछते रहोगे तो बनेगा नहीं। ये उपाय है, इसको करना है, चार छोड़ना है, और आपको चार छोड़ने आता है। कैसे मैं बताऊं, एक मोह की संतान है और एक मित्र की संतान है, और आपने भले आदमी हो करके भलमन सहज से दोनों को संभालना शुरू किया है। अपना लड़का बड़ा आदमी हो जाए, बड़े पोस्ट पर पहुंच जाए, बहुत अच्छी तरह से पढ़ना लिखना कर ले, और ये मेरे मित्र का लड़का भी ऐसा ही हो जाए, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपकी चाह हुई, इसमें आपने प्रयास आरंभ किया, और दोनों ही लड़के पिछड़ रहे हैं, तो बड़ी सहज भाव से आप मित्र के लड़के से अचार हो जाएंगे। भाड़ में जा नहीं होता है तो मत पढ़, नहीं सीखता है तो मत सीख, छोड़ देंगे उस चार को, बड़े सख्त से छोड़ देंगे। और जो अपना लड़का है वो 10 बार फेल करेगा तो 11वीं बार इम्तहान दिलवाएंगे। अचार होने आता है कि नहीं जी? आता है। ईश्वर को हम स्वीकार करते हैं पर स्वीकृति दृढ़ नहीं हो पाती। बड़ा बढ़िया उपाय महाराज जी ने बताया, ईश्वर को स्वीकार करने में एक शर्त है, केवल ईश्वर को स्वीकार करो। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वो इतना बड़ा है, वो इतना विशाल है, इतना व्यापक है कि वो और किसी के साथ तुम्हारे दिल में नहीं घुसेगा, वो अकेला ही घुसना पसंद करता है। इसलिए स्वीकृति दृढ़ क्यों नहीं होती कि ईश्वर भी मेरा है, ये हारमास का बना हुआ शरीर भी मेरा है, ये ईंट पत्थर का बना हुआ मकान भी मेरा है। दादाजी तो ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, तो भाई 100 चीज मेरी है, उसमें से एक ईश्वर भी मेरा है, तो 1/100 ईश्वर का स्थान हुआ ना, तो कैसे दृढ़ होगी स्वीकृति? वहां तो 100% चाहिए, 99% भी नहीं चलेगा, 100% चाहिए। इसलिए स्वीकृति दृढ़ नहीं होती। जिन भाई बहनों को स्वीकृति दृढ़ करनी हो उनको भक्तों की सलाह माननी चाहिए। भक्तों ने क्या सलाह दी? मीरा जी ने कह दिया, उपदेश नहीं देती थी मेरी तरह लेक्चर नहीं देती थी मीरा जी, लेकिन मीरा जी अपने मन का भाव प्रकट करती थी। तो उन्होंने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूर सरो न को, और प्रेम का मंत्र स्वामी जी ने पढ़ाया, कोई और नहीं है, संस्कृति में है, प्रेम का मंत्र स्वामी जी ने पढ़ाया। तो उन्होंने कहा कि कोई और नहीं है। मीरा जी ने कहा, दूस मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरा कोई मेरा नहीं है, ये मीरा जी ने कहा। और स्वामी जी कह रहे हैं कि ईश्वर विश्वास को दृढ़ करना है तो ये कहो कि दूसरा कोई है नहीं, है ही नहीं है दूसरा, कोई और नहीं है, वो एक ही है जिससे मैंने नाता जोड़ लिया, जो मेरा हो गया, हम हैं और वो है बस, और सब कुछ उसमें खो गया। तो स्वीकृति दृढ़ हो जाए। स्वाम जी महाराज के आस पास हम लोग घेरे रहते थे, दो चार नई उम्र के लोग भी, पुरानी उम्र के लोग भी, और बातचीत हो रही है, कोई जल पिला रहा है, कोई सिर सहला रहा है, कोई गपशप कर रहा है, कोई अपना दुख सुना रहा है, तो बात करते रहते महाराज तरह तरह से, और बीच बीच में हृदय से उद्गार कुछ कुछ निकलता रहता, वाह प्यारे तुमने खूब किया, वाह यार तुमने खूब किया, ऐसे किया वैसे किया। तो कभी कभी मुझे लगता कि हम लोग जो स्वामी जी महाराज की सेवा में लगे हुए हैं, तो महाराज हम लोगों को इतनी शाबाशी दे रहे हैं, तो संकोच में और कुछ नम्रता में मैं ये कह देती, अरे महाराज हम लोगों से क्या बनता है, आपका ही ऐसी ऐसी बात करते रहते हैं, तो खूब हंस देते और कहते कि लाली मैं तुमको थोड़े कह रहा हूँ, तुम समझ रही हो कि तुमको कह रहा हूँ, कोई और है ही नहीं। तो ईश्वर विश्वास को, स्वीकृति को दृढ़ करने का ये अचूक उपाय है, किसी और की सत्ता ही नहीं है। तो पहले मीरा जी की बात मान लो, क्योंकि बहुत सारे दिख रहे हैं अपने को, तो पहले उनकी बात मान लो। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न हो, दूसरा कोई मेरा है नहीं, केवल गिरधर गोपाल मेरे हैं। तो पहले ऐसा मान लो कि केवल वे ही मेरे हैं, और पीछे क्या होगा कि सब उनमें समा जाएगा, तब अपने आप दिखने लगेगा कि वो ही है, कोई और है नहीं। ये प्रेम का मंत्र है, स्वीकृति को दृढ़ करने का उपाय है। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में मनुष्य अच्छे कर्म करने से मानव बनता है, तो फिर वह मानव बनने के बाद गलत काम क्यों करता है? तो पूर्व जन्म में मनुष्य, तो मनुष्य और मानव, इन दोनों में आपने भेद कर दिया, तो मानव को ही मनुष्य कहिए, मनुष्य और मानव में भेद मत कीजिए। और मानव सेवा संघ के सिद्धांत में तो ऐसा माना गया कि मानव जीवन जो मिलता है किसी को, तो वह कर्म का फल नहीं है, क्योंकि शुभ कर्म करने का प्रश्न तो उठेगा मानव बनने के बाद। गाय बैल घोड़ा बकरी के जीवन में शुभ अशुभ कर्म का प्रश्न नहीं है, वो तो प्रकृति के नियम में बंधे हुए भोग योनियां हैं। शुभ कर्म करने का प्रश्न उठेगा कब? जब विवेक का प्रकाश देकर आपको दुनिया में भेजा जाएगा तब। तो पहले मनुष्य बनता है, पीछे शुभ कर्म करता है, इसलिए मानव जीवन जो है वो शुभ कर्म का परिणाम नहीं है। मानव जीवन जो है वो जीवन दाता का कृपा प्रसाद है, और जीवन मिलने के बाद आदमी को शुभ कर्म ही करना चाहिए, अशुभ नहीं करना चाहिए। तो आप कहते हैं कि क्यों करता है? तो दूसरों के बारे में तो हम जान ही नहीं सकते, अपने से पूछ लो कि मैं गलत काम क्यों करता हूँ, ठीक है ना? किससे किससे पूछे कि तुमने गलती क्यों की? और दूसरों से पूछने से फायदा ही क्या होगा, अपने ही से पूछ लो कि मैंने गलती क्यों की। और सचमुच अगर आप पूछेंगे तो आपको उत्तर भी मिल जाएगा, गलती मिटाने का बल भी मिल जाएगा। उत्तर क्या मिलेगा? विवेक का अनादर किया इसलिए गलती की। और बल क्या मिलेगा? अब से अनादर नहीं करूंगा, गलती खत्म हो जाएगी। कहा जाता है कि मनुष्य ईश्वर का अंश है, किंतु वह माया से प्रेरित होकर कार्य करता है, तो क्या माया ईश्वर से भी प्रबल है? ऐसा मालूम होता है, अब मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ ना, तो साइकोलॉजिकल उत्तर आ रहा है दिमाग में। ऐसा मालूम होता है कि हम लोग अब अपनी गलती का दायित्व चाहे ईश्वर पर चाहे माया पर देना चाहते हैं, तो मानव सुरासन नहीं करने के लिए।